की आज प्रथम अध्यक्षता करती है विद्वत सभा की, इसलिए इनके करकमलों में इन्हीं की वस्तु ये द्वारकाधीश का इसी सर्ग का महाकाव्य वार्ता बड़माला कुमार विक्रमम लौकिक चरित्र इंदिरा काव्य युगस्तर माला कंप्यूटर अस्वचरण राजीव गांधी काव्य और आनंद कंद चंपू जिसमें जन्मस्थान का वर्णन है और ये 500 ब्रह्म सूत्र और भागवत
महाराज जी के बाद बोलना मेरा उसके संग होगा तो धन्यवाद ज्ञापन बोलने को भी करेंगे।
महाराज मेरी दृष्टि में आज कहते हैं, आप जरा मुझे साथ दें तो अच्छा रहेगा। हम सरोवर में शोभित होता है। आज मुझे लगता है हमारे भक्त वेदांत नारायण जी हमारे बीच में, हंस तो आप लोग हुए, हम लोग भी समझ लो काँव काँव करते हैं ना, इसलिए फिर भी हंस तो हैं। तो हंसों के बीच में जैसे मानसरोवर में आपकी शोभा हो तो विद्वन मंडली हो गई मानसरोवर, आप लोग हो गए मानसरोवर, महाराज जी हो गए हंस। अथवा मैं तो ये मानूंगा ये मथुरा में जब से आए सिंह के से गरज रहे हैं और रहते कंदरा में, शिष्य बहुत बना लिए हैं इन्होंने भगवान नाम के प्रभाव से, तो आज उनको मैं प्रणाम कर लूँ। हंसो यथारा जत मानसस्थ, जैसे हंस मानसरोवर में, और सिंहो यथारा जत कंदरस्थ, सिंह की शोभा कंदरा में, हंस की शोभा मानसरोवर में, तथैव गौड़ीय विशाल। तीर्थ से कर दूं महाराज, ये तो तीर्थ हो गया आपका। तथैव गौड़ीय विशाल तीर्थे सम्राजते ध्याख महोदयोत्र, हमारे महाराज इसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे संयोजक बना दिया। संयोजक का अर्थ जानते हैं आप, औरों के लिए दुखदाई, परंतु महाराज की आज्ञा का पालन करना पड़ा। पर महाराज विद्वानों से भी क्षमा मांगता हूँ जिनके समय मैंने बहुत जल्दी जल्दी चलाई, अन्यथा मैं जानता था निशीते तमुद्भूते हो जाएगा। और अब मैं प्रभु से निवेदन करता हूँ कि आप अपने वक्तव्य को प्रारंभ करें और मेरे कोई अनुचित शब्द हो उन्हें स्वीकार मत करना, कोई अच्छा ही हो उससे जरूर मुझे आशीर्वाद देना। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान।
वंदेहं श्रीगुरो श्रीवैष्णवांश रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितां सन्निशं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण श्रीललिता विशाखान्वितांश। आदरणीय परमादरणीय भागवत के रसिक एवं भावुक विद्वान सब वैष्णवगण वैष्णवीगण, आज मेरे बहुत दिनों की इच्छा पूर्ण हुई। न जाने कैसे हमारे परम विद्वान संचालक महोदय वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी ने हमारे भावों को जान करके पहले ही उन्होंने व्यक्त कर दिया। बहुत जगह बड़े बड़े विद्वानों को, विशेष करके अखंडानंद सरस्वती कारपात्री जी का भी हमने सुना, उन्होंने इस श्लोक को मूल बतला करके कैवल्य शब्द का अर्थ मुक्ति बतलाया और उसी को ही श्रीमद् भागवत का प्रयोजन प्रतिपादित किया। हमारे मन में एक पीस रहती थी, हमने इसके लिए सचमुच में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का सारा साहित्य हमने इसकी खोज के लिए शिलजी गोस्वामी के संदर्भों को देखा, क्रम संदर्भ इत्यादि को देखा। इसके लिए हमने वल्लभाचार्य जी की सुबोधिनी टीका जी को भी देखा, किंतु बड़े बड़े विद्वानों को इसमें इस तरह देखा। इसलिए हमारे मन में ये आज इच्छा थी कि किस प्रकार से विद्वत सभा में, विशेष करके मथुरा जो हमारे भारतवर्ष के नहीं विश्व के अग्रगण्य है इस विषय में, उनकी सभा में इसी श्लोक का विवेचन हो और सबको एक स्पष्ट निर्देश मिले ये इस श्लोक का मूल तात्पर्य क्या है। आज हम मैं प्रारंभ से ही एक एक विद्वानों को सुना। हमारी कुछ धारणाएं थी वो गलत थी। पहले हमारी धारणा थी मथुरा के जो विद्वान हैं वो लोग सभा के विद्वान होते हैं, वैष्णव की सभा में वैष्णव, शैवों की सभा में शैव, राजनीति के सभाओं में राजनीतिज्ञ ऐसे होते हैं। किंतु यह धारणा कुछ दिनों के बाद में हमारी समाप्त हो गई। तब धारणा ये सब नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस सभा में जब जैसा बैठते हैं वैसा ही करते हैं, अपने पाटनीति को दिखलाते हैं। किंतु आज हमारी वो धारणा भी निर्मूल हो गई। आज यहाँ पर इतने विद्वान उपस्थित हैं, किसी के मुख से हमने वैसी व्याख्या नहीं की। आज सबको अद्भुत अद्भुत चमत्कार चमत्कार जो हमने श्रवण किए, सचमुच में मैं गदगद हो गया। मैं विद्वान नहीं हूँ, बात आप सभी लोग जानते हैं। कोई संस्कृत का स या अनुस्वार अभिसर्ग भी मुझको याद नहीं, न जानता हूँ, उच्चारण भी नहीं, कुछ भी नहीं। किंतु गुरु बच्चन गुरु जी के संग में रह करके उनकी कुछ सेवा की और ये विद्वानों के कुछ संग में मैं पिछड़ा, इसलिए समझने की कुछ चेष्टा करता हूँ। तो मैंने देखा कैसे अद्भुत अद्भुत अर्थ इन यथार्थ श्रीमद् भागवत के पंडितों ने किए। आज मेरी धारणा वो भी समाप्त हो गई। नहीं, मथुरा के विद्वान कैसे हैं, सारक गाही और श्रीमद् भागवत के यथार्थ ये विद्वान हैं। वो जैसे हमारे भट्ट जी ने बतलाया ना, भागवत मोहिनी स्वरूप है। ये जीव गोस्वामी का ये विचार है, अद्भुत विचार। अब इसके विषय में मैं अधिक नहीं बतलाना चाहता, बोलना नहीं चाहता, पिस्टपेशन हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत ये मोहिनी रूप स्वरूप होकर के एक दो उसके अर्थ हैं, कई बल्ले के प्रयोजन का बतलाया। उसमें पहले बतलाया भक्ति केवलया या केवलया भक्त्या, इस मत भागवत में बतलाया केवल भक्ति। और दूसरा न बाछंती बांछंती, वो श्लोक जो बतलाया अभी कैवल्यम अपुनर्भवम। तो कैवल्य जो अपुनर्भव है इसका भी अर्थ कैवल्य में लिया, और उधर भक्ति केवल भक्ति अर्थात जैसे कि भट्ट जी ने ये जी गोस्वामी के विचारों से प्रतिपादित किया, ये हरि लीला कथा ब्राता एव अमृतम, यही केवल मात्र अमृत है और यही प्रेमा भक्ति ही प्रयोजन एकमात्र है। तो पहला जो अर्थ है भक्ति वाला केवल या भक्त्या, ये भक्ति ही प्रयोजन है। और दूसरे अर्थ के लिए यहाँ पर कि कैवल्य जो निर्वाण के अर्थ में किया उसके लिए ही उन्होंने कहा, दो उदाहरण देकर के उसने उन्होंने बतलाया। श्रीमद् भागवत मोहिनी स्वरूप है, स्वभक्त जो है उनके तरफ में भ्रुभंग करते हुए उनको वह अमृत दे रहे हैं। वह अमृत क्या है, यही हरि लीला कथा प्राता। और यही एकमात्र प्रेम प्रयोजन है, भक्ति ही, प्रेमा भक्ति ही एकमात्र प्रयोजन है। ये तो भक्तों को पान कराया, इसमें जो आनंद है ये तो अमृत ही प्रयोजन है, और आनंद इसका अनुभव है। यही भक्त लोग अमृत को पान करके रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि में मुक्त हो जाते हैं। ये सब प्रकट उनके भाव से अनुभव होते हैं, आनंद में वो भर जाते हैं। और जो भक्ति परक नहीं है, जो निर्वाण इत्यादि रखते हैं, उनके तरफ में स्पष्ट रूप में वो कैवल्यैक प्रयोजनम, वो जो आत्मा और ब्रह्म आत्मिक लक्षण बतलाया, वो सब उनको दिया। इसलिए यहां पर श्रीमद्भागवत का जो विचार हम करते हैं, प्रारंभ से ही, प्रथम श्लोक से ही, जिसमें बतलाया गया है आदि रस, मधुर रस को आदि रस बतलाया गया। ये श्रीमद्भागवत जन्मादस्य जतः, जन्म आदि, आदि का माने जन्म हुआ है, आदि रस का किससे हुआ, कृष्ण से नहीं, कृष्ण और राधा जुगल से ये भी नहीं, ठीक है ये भी हैं, किंतु ये राधा जी से ये प्रकटित हुआ है रस। यदि राधा जी न रहे तो वस्तु निर्विशेष हो जाएगा। इसीलिए यहां पर सत्यम परम धीमही जो कहा गया, उसमें जो तेजो बारी मृदांग जो है, तेज भर्गो देवस्य, देवस्य भर्ग, कृष्ण देवस्य भर्ग, तेज माने यहां पर ऊर्जा है श्रीमती राधिका। यदि ऊर्जा न रहे तो कुछ काम ही नहीं बन सकता। गोवर्धन को धारण करना चाहते जितने भी लीलाएं हैं इस ऊर्जा शक्ति के द्वारा हुआ है, इसलिए श्रीमती राधिका जी ऊर्जेश्वरी हैं, इसीलिए उन्हीं से ही सब लीला होती हैं। यदि उनको वहां से हटा दो, सलातनी शक्ति को, स्वरूप शक्ति को, उनकी कोई लीला ही नहीं संभव पर है। इसलिए सत्यम परम धीमही का इसी से ही उनको प्रणाम किया है श्रीमती राधिका जी को। इसी श्लोक में भी अभी आप लोगों ने बाल पंडित किंतु प्रखर विद्वान है हमारे बसंत लाल जी, हमारे मनोहर लाल जी के प्रिय शिष्य, उनका यह सुनकर के मुझे बहुत ही आनंद हुआ। यहाँ पर कृष्ण ही वस्तु हैं और राधा जी उनकी आत्मा है, दोनों का कैसा सुंदर विवेचन किया, अद्भुत यह सब विचार किया। तो जीव गोस्वामी ने इसी तरह से सब सुंदर विवेचन करके इसकी प्रतिष्ठा की है। समय बहुत कम है, बड़े बड़े विद्वानों ने, हमारे मनोहर लाल शास्त्री जी ने, हमारे भट्ट जी ने, हमारे धीरल लाल गोस्वामी ने, कुंज बिहारी जी, ये हमारे मुरारी मोहन जी, हमारे वो विद्वान लोगों ने अभी अंत में बोले हमारे विष्णु दत्त जी, और अंत में हमारे प्रख्यात विद्वान वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी ने जो कहा, हमको और अधिक कुछ नहीं कहना है, हमारी जो इच्छा थी वो हमारी पूर्ण हुई, मैं बहुत संतुष्ट हुआ। मैं समझता हूं कि ये जो सभा हुई मथुरा के विद्वानों को भी ये प्रेरणा देगी, और भागवत का इसी प्रकार से अर्थ करने के लिए वो प्रेरित होंगे, एक दिशा निर्देश। तो हमारा वो उस श्लोक की जो व्याख्या सुनने की इच्छा थी वो पूर्ण हुई। आज मैं ही नहीं, अभी ठाकुर जी की आरती नहीं, 9:30, 9:30, इसलिए मैं यहीं पर समस्त विद्वान मंडली को, जो कि अद्भुत अद्भुत अर्थ प्रकाश किया, विशेष करके कैवल्य शक्ति व्यक्तिगत अर्थ जो उन्होंने किए और अद्भुत अद्भुत अर्थों को प्रकाश किया, मैं इनको सब प्रकार से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, मैं इनका अभिवादन करता हूं। मैं सबसे पहले ये ले आऊं, तब इसमें किसी को यदि किसी से किसी शब्द से आघात हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं पंडित लोगों का तो अभिवादन कुछ नहीं करने में समर्थ नहीं हूँ, मैं बहुत ही दीनहीन हूँ। अर्थ की तरफ से भी, भक्ति के तरफ से भी, सचमुच में ये मेरे लिए ही ये है तीनादपि सुनेज, ये श्लोक तो है किंतु मैं चाहता था, किंतु हमारे अंदर में ये सब कोई चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए विद्वानों का आदर भी करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। तथापि एक प्रतीक रूप में मैं इनका सम्मान करता हूँ, हमारा हार्दिक ये लोग अभिवादन स्वीकार करें। और बाकी सब लोगों ने क्या समझा, ये कांच के टुकड़े हैं, कोई करे 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 8 आना, कोई 4 आना, उसका मूल्य दे रहा है, कोई ऐसे ही ले रहा है, तो उसको तो मालूम नहीं ऐसे भी दे रहा है। किंतु पार्थी ने देखा जा रही ये कैसे बेवकूफ है, जो देने वाला है वो भी नहीं जानता इसका मूल्य, जो लेने वाले हैं वो भी मूल्य नहीं जानते। ये इतना सुंदर था स्वरूप गोस्वामी ने सहेज करके रखा, उज्ज्वली निर्मल इत्यादि ग्रंथों में माँ भाव का प्रेम वैचित्र इत्यादि का भ्रमर गीता का उचित भाव, और उसमें उन लोगों ने मंचन किया, मैंने मंच पर दिखलाया। एक राधा और कृष्ण पन बिहार में आते हैं, ऋतु बसंत है, राधा कुंड का तट, राधा कुंड हम जैसे देखते हैं वैसे नहीं, बरसाना कभी करोड़ों दूर, अत्यंत मनोहर प्राकृतिक दृश्य दूर, उसमें कमल उत्सव खिले हुए हैं और कमलों के ऊपर में भौरे गुंजार कर रहे हैं, पास ही में आम के वृक्ष हैं, कुंज हैं, उस पर कोयल कुहक रही है, और वहीं पर कदम्ब के वृक्ष हैं जिन पर की मयूर मयूरी दोनों एक डाल पर वो एक डाल पर हे वो कहता है का इस तरह से के का कर, पास ही अनार की कलियों पर सुख पक्षी बैठा है, और पाती में जो मैना होती है जिसको सारी कहते हैं वो अंगूर के बेल पर बैठी हुई है, और वो भी राधा कृष्ण का जप कर रही है, कृष्ण ललिता विशाखा इत्यादि के साथ में राधा कृष्ण युगल किशोर वहां पर भ्रमण करने के लिए आए, विहार करने के लिए कदम्ब की छैया में रहती है, ललिता इत्यादि सखियां उनके पास में आकर के कहती हैं आज हम लोग अभी स्कूल कैंप के लिए जा रहे हैं और उसमें अच्छे अच्छे श्रृंगार हम लोग बनाएंगे, जिसमें आपकी वो क्या होती है चंद्रिका और कृष्ण का ब्रजरत्न और अंगद बाजू और सब चीजें हार, ये सब चीजें बना करके फूलों का भी कलियों का, और आज हम आपकी सेवा करें, ये कह करके एक करताल दो करताल। वो लोग राधा कृष्ण को वहीं पर छोड़ करके फूल चयन करने के लिए चले। इतने में ललिता शिशी के अभिनायकत्व में अध्यक्षता में उसमें से दो अलबेली सखियां बच्चे किशोर का रूप धारण कर लिया और पुरुष जैसे कपड़े उसमें ने और नट नटनी बन गए। गुणीजन उन्हीं को कहते हैं गुणीजन, गुणीजन माने नट नटवर भी बन करके उनके सामने आए। उन्होंने कहा आज हम आपको रिझाना चाहते हैं और आप प्रसन्न होकर के जो पुरस्कार दे देंगे हम ले लेंगे, जैसे ठीक है। उन्होंने बहुत ही सुंदर नृत्य किया, बहुत अद्भुत, जो किसी साधारण आदमी के लिए नृत्य करना संभव नहीं। सब गोपियां कलाओं में 60 कलाओं में पारंगत होती हैं, 64 कलाओं में पारंगत होती हैं, यहाँ तक कि कृष्ण को नृत्य की शिक्षा भी दे सकती हैं, कृष्ण भी नाचते हैं, उनको भी नचा देती हैं, उनको शिक्षा देने वाली ये सब गोपियां हैं। तो वैसे ही कोई प्रधान गोपी और गोपी दो वैसे बन करके आए और इतना सुंदर नृत्य किया और गायन किया और कलाएं दिखलाएं कि वो दोनों प्रसन्न हो। राधा जी ने कहा जी मैं तुमको क्या पुरस्कार दूं। उन्होंने कहा जी आप हमको क्या पुरस्कार देंगे, तो नहीं कुछ जो कुछ मांगेगी मैं दे दूंगा, ऐसा तो आप मत कहिए। तो ऐसे ही मैं कह रही हूं, जो मांगेंगे दे देंगे। तो कहा जी अच्छा हम ही भरवा दिया, संकल्प करा लिया, अच्छा तो दे देगी ना, तो दे दे। अच्छा जब देंगी तो आपका जो आपके लिए जो संसार में सब जगह में त्रिलोकी में आपके लिए जो सबसे अधिक प्रिय चीज है वो हमको दे दो। तो राधा जी चिंता करने लगी, चिंता चिंता कर करके देखी कि हमारा सबसे अधिक प्यारा चीज क्या है, उनके लिए प्यारा चीज क्या हो सकता है। वो समझ गई कि वो ये तो बड़ा हमारे साथ में चाल चली, हमको बतलाया नहीं। तूने कहा आप भटक क्यों रही हैं, दे तो दीजिए, आप कहिए तो तुम बतलाओ कि क्या हमारी प्रिया चीज है जो तुम लेना चाहती है। तो आप समझी नहीं, आपका जो प्रिय बस दे दीजिए, तो तुम बतला अब तो वो बहुत तिल मिला गई, कैसे देगी। सुनते ही कुछ देर के बाद में चिंतन करते 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 जब मैंने दे दिया, अब हाँ भी नहीं कर रही न भी कर रही, चिंतन करते 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 कृष्ण वहीं पर बैठे हैं और वो हा कृष्ण हा कृष्ण हा श्याम सुंदर करने लग गई, एकदम भाव में होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। कृष्ण ने उनकी ये दशा देखी दीरा की, उनसे भी नहीं रहा गया, कोमल हृदय मक्खन से भी वो भी मूर्छित होकर के सेंसलेस होकर के गिर। अब वो जो दो नट नट जो नट थे गुणीजन जो सखियां ही थी, वो विशाखा या चित्रा या तुंग विद्या ऐसी कोई सखी होगी, तुंग विद्या होगी एक और एक चित्रा भी होगी, ये दोनों सखियां ऐसे बदल रही थी वेश जो उनको मालूम नहीं हो रहा था कि हमारी ये सखी हैं। उन्होंने आकर के उनका पंखे से और सखी आकर के पंखा नहीं अपने कपड़ों से हवा बदास करने लगी। धीरे धीरे पानी का छीटा गुलाब जल इत्यादि कहीं से ले आई और छीटा देने लगी। किसी प्रकार से पहले कृष्ण उठे, फिर कृष्ण भी उसमें लग गए, दोनों सब लोगों ने मिलकर के राधा जी को थोड़ा सा होश हुआ। श्याम सुंदर कहती हुई वो उठी, कहीं से आपने यही देने के लिए कहा और सुनते ही आप ऐसे हो गई, अब देंगे कि मैं चली जाऊं, मैं अब हम लोग जा रही हैं, आप दे नहीं सकते। अरे मैंने जबकि कहा है हामी भरी है, जब देने के लिए कहा तो जरूर दे दो, तो दे देगी तो दे दो। अब धैर्य धारण करके किसी प्रकार से कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं, कभी छोड़ रही हैं, कभी देख रही हैं, कभी दे रही हैं, कभी ले रही हैं। कृष्ण को लेकर के ये दोनों दोनों बगल में उनको पकड़ करके लेकर के चले। राधा जी देख करके सब नहीं रह गया, जब खड़ी रही और देख रही हैं, दौड़ करके फिर से कहीं तो क्या दे दिया, तुम ले जाओ हम जा रहे हैं। फिर भी फिर लौट आई, अब वो उनको लेकर के अंतराल में चले गए पर्दे के पीछे, मैंने झाड़ियों में कहीं गुम हो, और उधर से नेपथ्य से लौट करके फिर इधर आ गए। इधर राधा जी प्रेम में विवल होकर के अत्यंत भ्रमर दशा जैसे हुई थी, एकदम शुद्ध बुद्ध खुल जाती हैं और भूल जाती हैं, कभी कभी श्रृंगार करती हैं अपनी और बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। कैसे विरह में मिलन, आकृष्ण तो कहीं गए ने तमाल पृक्ष को देखा लिपट गई, बोली यही तो श्याम सुंदर है, और उधर में कृष्ण जाकर के उधर से देख रहे हैं और वो सखियां भी देख रही हैं, पीछे से उनको नेपथ्य में कर दिया। अब कृष्ण उनके साथ में फिर आए, कृष्ण को ले जा रही हैं और कृष्ण राधे राधे कहते हुए एकदम उनके डग नहीं पड़ते, आगे चलते नहीं, कभी मूर्छित होता है कभी कुछ होता है, ये राधे राधे कर रहे हैं और वो श्याम श्याम कर रही हैं, दोनों विरह में एकदम। थोड़ी देर के बाद में उधर से कृष्ण और वो दोनों गुणी उनके साथ में और सहेलियों के साथ में राधा जी वहां पर पहुंची। राधा जी को देख करके कृष्ण और कृष्ण को देख करके राधा दोनों एकदम दौड़ करके दोनों मिलकर के भाव में विधुर हो जाते हैं। उस समय में ये जो गुणीजन हैं हाथ जोड़ करके राधा कृष्ण के सामने खड़े हो गए, राधा जी के पास। उन्होंने कहा कि ये तो आपने पुरस्कार देने के लिए हमको कहा था, आपने हम पुरस्कार देंगे, मांग लो। तब हमने मांगा, अपने मन से नहीं मांगा, तो आपने हमको श्याम सुंदर दे दिया और आपकी ऐसी दशा हुई, अब हम कुछ अपने तरफ से मांगना चाहते, तो क्या मांगना मांगो। तब वो कह रही हैं राधा जी से, देखो प्यारी जी, हम ये चाहती हैं अब चिर दिन के लिए अपने चरणों में हमको रख लीजिए। राधा जी अधिक विचार नहीं किया, क्योंकि वो तो तन्मय थी, और ये अच्छी बात है, हमारे चरणों में रह जाओ, हम आपकी सेवा करेंगे और कभी भी जन्म जन्मांतर में आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके चरणों में सब समय सदा के लिए पड़ी रहेंगी। यह सुनते ही कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हो गए। किस लिए प्रसन्न हो गए? ये सहेली तो रहेगी उन्हीं के पास में, और इसने लिया है तो अब हम भी उनको पास में बाध्य हो। राधा जी ने फिर समझा था, राधा जी भी बड़ी प्रसन्न हो गई और फिर उस सखी को अपना आलिंगन दिया राधा जी ने। आ तुमने हमको जीवन दान कर दिया, ऐसा वर मांगा जैसे हमको जीवन दान मिले। ये सब लीला संक्षेप में बतलाई उन्होंने किया। छोटी छोटी बालिकाएं कर रही थी, वो तो वैसे ही कर रही थी, उनको तो पता नहीं, किंतु अभिनय कर रही थी, गा रही थी, गला भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से किया, हमको तो बहुत ही सुंदर लगा, ये भावना प्रधान चीज। और कल अंतिम दिन यहाँ के मथुरा के बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग, धुरंधर, षट वेदाचार्य, चार ही वेद होते हैं किंतु वो लोग षट वेदाचार्य हैं, चतुर्वेद हैं, षट वेदाचार्य, षट दर्शन का और काव्य न्याय, ये षट माने छ, ये छ
आपके लिए छ नहीं
छ, ये सब दर्शन शास्त्र हैं, चार वेद हैं, उपनिषद, पुराण, यथार्थ में ये लोग पंडित हैं, माने चाहे ना माने अपने आप, चाहे उसमें प्रतिष्ठित हो ना हो, किंतु जानने वाले हैं। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान, हम लोगों का ज्ञान विज्ञान के रूप में परिणत होता है और उनका ज्ञान ज्ञान ही में रह जाता है। वो कहेंगे कृष्ण का भजन करो राधा जी का, और करेंगे दुर्गा जी का भजन, सत्यनारायण की सिद्धि बांटेंगे। समय अंत में कहा था, जिसको सुन करके सभी लोग बड़े हंसने लगे। मैंने कहा कि मैं पहले जानता था, मुझको ऐसी धारणा थी, मथुरा के चौबे लोग जितने विद्वान हैं वो लोग सभी करीब करीब जैसी सभा होती है ऐसे ही बातें करते हैं। ठाकुर सोहाती जानती हैं, ठाकुर सोहाती बात, ठाकुर में जिसको जैसा प्रसन्न हो उसे, किसी को भी आप ही भगवान हैं, दुर्गा जी की उपासना कर दो, उनका आप ही दुर्गा देवी हैं, जहां पर गणेश की चर्चा, वहां पर गणेश की महत्ता बतलाएंगे, शंकर जी की महत्ता शंकर जी को, आप कृष्ण की सभा में जाकर के वैष्णव की सभा में कृष्ण और राम की प्रशंसा करें। अपना कुछ नहीं, जो कुछ मिल गया गमछे में बांध लिया और लेकर के चल पड़े घर पर, बस यही उनको मिला। हमने कहा जैसे पहले हमारी धारणा थी, किंतु कुछ दिनों के बाद हमारी ये धारणा छूटी। अच्छा, कुछ ऐसे अधिकांश ऐसे है और कुछ ऐसे है जो एकांतिक है। एकांतिक माने राधा कृष्ण का भजन करने वाले हैं या कृष्ण का। और अब आज हमको देख करके मालूम होता है, हमने भी ऊपर से ही कही कि हाँ, यहाँ के चतुर्वेदी लोग सचमुच में कृष्ण के भक्त हैं, किंतु ऐसा होना बड़ा कठिन है। तो हमने इसी के लिए मैंने सोचा ये लोग आए छल से, बल से, कौशल से, जैसे भी कृष्ण की महत्ता समझें, कृष्ण से बढ़कर के कोई परतत्व नहीं है, और उनकी लादनी शक्ति राधा जी हैं, राधा जी के साथ में रहने से ही कृष्ण रसिक शेखर हैं, अन्यथा वो निर्विशेषवादी, निर्गुण निराकार निर्विवादी बन जाएंगे, अव्यक्त अनादि बन जाएंगे। इसलिए इनको निमंत्रण करके हमने लाया, और एक श्लोक श्रीमद् भागवत से मैंने दिया, कैवल्य कैवल्यैक प्रयोजनम्। श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है सर्व वेदांत सारम जब ब्रह्मात्मक लक्षणम वस्तु अद्वितीय तनिष्ठम कैवल्य के प्रयोजन। ये श्लोक हमने दिया, ये इस पर विचार करके आप लोग बतलाएंगे इसका अर्थ क्या है, ये भागवत का प्रयोजन है। देखो जितने अद्वैतवादी हैं, ये गीता प्रेस की छपी हुई भागवत है, उसका अर्थ उसमें उन्होंने अखंडानंद सरस्वती जी ने इसका अनुवाद, तो इसका कैसा अनुवाद करते हैं, एकदम भूल विपरीत। और अधिकांश पंडित लोग इसी को लेकर के चलते हैं। तो हम लोगों ने, तो देखो इसका अर्थ है ये आदि, इसका आगे का श्लोक और एक पीछे का श्लोक, एक बीच का, तीन श्लोक हैं। आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम हरि लीला कथा भ्राता मृतानंदी तत्सुरम, ये इसका अर्थ लेते हैं। इसके आदि में, मध्य में और अंत में वैराग्य से को उत्पन्न करने वाली भगवान की मधुर मधुर लीलाएं हैं। इस महापुराण में जो हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप हैं ही, वो तो हैं ही, उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं का बढ़